नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त जो कि हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में घटती गरीबी और सरकारी डाटे की सच्चाई। पिछले 10 सालों में गेहूं की MSP में महज 800 रुपए की वृद्धि हुई है, वही धान में 823 रुपए की वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से 23 फसलों को ही MSP में शामिल किया गया है, जबकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा धान और गेहूं के हिस्से में जाता है। यह हाल तब है जब महज कुछ प्रतिशत बड़े किसानों को ही अपनी फसल की MSP मिल पाती है। एक और आंकड़ा है जो इसकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से बयां करता है। 2013-14 में एक परिवार की मासिक आय 6,426 रुपये थी, वही 2018-19 में यह बढ़कर 10,218 रुपये हो गई है। इसके बाद सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया है। क्या लगता है कि सरकार आंकड़े जारी करने में क्यों आनाकानी कर रही है या जारी नहीं कर पा रही है? आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष संदीप जी बखमी जुड़े हुए। सर, मोबाइल पर स्वागत सबका।
नमस्कार अभित जी।
जी सर। सर, घटती गरीबी और 2018-19 के बाद वास्तविक आंकड़े सामने न लाना कहाँ देखते हैं सर?
गरीबी तो घट नहीं रही है, हम तो देख रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हम किसान परिवार से हैं और गरीबी दिनों दिन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। गरीबों की संख्या बढ़ रही है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, वहां का वर्कर जब 12 घंटा काम करता है, पूरे महीने काम करता है, तब उसको कहीं जाकर 10,000 रुपया 8,000 रुपया सैलरी मिलती है। अब यदि 30 दिन की मेहनताना 12 घंटे प्रतिदिन काम करने के बाद यदि उसको 10,000 रुपया किसी वर्कर को मिल रहे हैं, वो अपने परिवार को पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा क्या, और परिवार को खिलाएगा क्या, और खुद क्या खाएगा? और महंगाई आपने देखा होगा, पेट्रोल 100 रुपए के पार है, तेल की कीमत, खाने का जो तेल है, रोजमर्रा की जो जीवन उपयोगी वस्तुएं है, साबुन हो, जो 15 रुपए में एक रिन साबुन पिछले वर्ष मिलती थी, आज वही साबुन 25 रुपए में मिलने लगी है। 10 रुपए की बढ़ोतरी एक साबुन की हो गई है। तो ये जो गरीबी के इनकम के आंकड़े है वो भी सरकार के गलत है, और जो गरीबी इन्होंने घटाई दिखाई और यहाँ देश के लोग अमीर होते दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़े सरासर गलत है।
जी सर। सर, 23 फसलों की जो MSP में शामिल किया गया है, देश के कुछ किसान ही इसका लाभ मिल पाता है कुछ ही फसलों पर। सर, ये सभी को मिले, सभी किसानों को मिले, ऐसी की व्यवस्था सरकार
आंकड़ों में अनियमित आंकड़ों में अनियमितता है। सरकार की और अफसरों की होशियारी से बनाए गए आंकड़े हैं, जो जिस क्षेत्र में की जो मुख्य फसल होती है, जैसे महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर पे हमारा कपास की मुख्य फसल है, संतरे की मुख्य फसल है, आप उन फसलों को प्रायोरिटी देके उसकी MSP किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए। आप ये तो नहीं करते, पर आपने ऐसे फसलों की MSP तय करके रखी है जो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम रेशो में किसान उसका उत्पादन लेते हैं। कई सारी दलहन है और ऐसे फसलों की MSP 40 यदि है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस क्षेत्र में, जैसे पंजाब और दिल्ली हरियाणा में गेहूं होता है, तो वहां MSP का ज्यादा महत्व है, उनको गेहूं की अच्छी MSP वहां मिलना चाहिए। हमारे यहाँ किसान और संतरा है, तो हमें किसान और संतरे के की MSP अच्छी मिलनी चाहिए।
सर, 2018-19 में आंकड़ों में 10,218 रुपये मासिक आय बतलाई गई थी, क्या सर वास्तविक स्थिति इतनी बेहतर या कैसी देखते हैं सर?
किसानों की और मजदूरों की और गांव में रहने वाले ग्रामीणों की इतनी अच्छी स्थिति होती तो हमारा देश कहां के कहां चला जाता है। आज हमारे किसानों के बच्चों को फ्री में शिक्षा, फ्री में भोजन कराने की आवश्यकता नहीं होती। पीएम आवास योजना के तहत आवास देने की योजना की जरूरत नहीं होती। किसानों को सब्सिडी और कर्ज माफी की आवश्यकता नहीं होती। हमें महिलाओं को गैस और ये योजना में मुफ्त सिलेंडर देने की आवश्यकता नहीं होती। केवल आंकड़ों का खेल है, मुंह का बाजार है, झूठे आश्वासन है और केवल गरीबों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, इस देश का जो गरीब गांव में किसान बसता है उनका उपयोग, उनको केवल आश्वासन सरकार बनाने तक सीमित है। ना तो विपक्ष किसी बात को आवाज उठाता है, ना ही इस देश की जनता सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाती है। आज सरकार को ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता है जैसे निर्णय, ठोक निर्णय और गरीबी हटाओ जैसे नारे, जैसे इंदिरा गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री इस देश की इंदिरा गांधी ने दिया था, श्वेत क्रांति का नारा दिया था, हरित क्रांति का नारा दिया था, इस देश से अन्न की कमी दूर किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया उन्होंने इंदिरा आवास के तहत। उस समय जो जल जंगल खेती में जो किसान और आदिवासी रहते थे उनको गांव में बसाने का काम किया। ऐसे निर्णय एक शाहूकारी पद्धति थी कि पहले बड़े बड़े लोग जो जमींदार थे, शाहूकार लोग थे, वो गरीबों को बड़े ब्याज पे पैसे देते थे और जिससे किसान और मजदूर बहुत परेशान रहता था। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके शाहूकारी पद्धति बंद कर दी। एक गरीबों के हित में बहुत बड़ा निर्णय इंदिरा गांधी के सरकार ने लिए थे, वैसे जनहित के निर्णय आज हमारे प्रदेशों की सरकार को और केंद्र में बैठी सरकार को गांव के गरीबों के, किसानों के हित में ऐसे बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम जो निर्णय ले रहे हैं, हमारी जो सरकार आज जो निर्णय ले रही है वो आरक्षण खत्म करने की निर्णय ले रही है। आरक्षण खत्म करने का निर्णय का मतलब क्या है कि आप गरीबों के पेट पे सीधा छुरा चलाने का काम कर रहे हैं। आप गरीब के बच्चों को अवसर देना नहीं चाहते, आप उनकी उन्नति को नहीं देखना चाहते। आपने अड़ानी अंबानी बड़े उद्योगपतियों को रेलवे जैसे, BSNL जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको दे दिए, तो गरीबों का और आम आदमी का और मध्यम वर्गीय का क्या होगा।
सर एक और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान भी बहुत बड़ा है, वर्तमान परिस्थितियां कैसे देखते सर?
ये 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, ये इंग्लिश के वर्ड बोलने से, अंग्रेजी भाषा बोलने से कोई झूठी बात सच नहीं हो जाएगी। ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुवादी सरकार बनी है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इस गांव के किसानों को समझाना चाहिए कि आपको एक साल की कीमत, एक साल की इनकम आपको ये होगी। एक मजदूर को इस देश की सरकार ने ये समझाना चाहिए कि बेटा तू 8 घंटे काम करेगा तो तेरी मंथली इनकम ये होगी, तो अपने बच्चों को, बीवी को पढ़ा के, उनको खाना खिला के, उनका इलाज करा के, महीने के आखिरी दिन तेरे पास इतनी बचत होगी। तब हमारे बड़े बड़े भाषण और इंग्लिश में ट्रिलियन और ब्रिलियन ब्रिलियन बोलने का कुछ मतलब निकलेगा। इस देश के किसानों को क्या आप ट्रिलियन समझाते हैं? क्या आप इस देश के मजदूरों को, इस देश के बेगाओं को, इस देश के आदिवासी समाज को, इस देश के दलितों को, जंगल में रह रहे लोग या किस स्थिति में रह रहे हैं? आज मुख्य सड़क से जुड़े नहीं है आपके देश के लोग, उनको अच्छी शिक्षा मिल नहीं रही है, उनको अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा मिल नहीं रही है, और आप कहां 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं? किसको समझ रहा है क्या ट्रिलियन हो रहा है? इस देश में 80% आबादी गांव में बसती है और खेती किसानी करती है, उन बिचारों को क्या ट्रिलियन समझा रहे? उनको इतना समझा दो कि महीने का जो आप जो कपास उत्पादन करोगे, आपके कपास में जो लागत 5,000 रुपया लगेगी तो आपको 10,000 रुपया प्रति क्विंटल भाव मिलेगा। आपके मक्के में यदि 1,000 रुपया की लागत खाद बीज की लगती है तो 2,000 रुपये में बिकेगा, मतलब 1,000 रुपया आपको शुद्ध रूप से बचेगा। तब इस देश का किसान, गांव का मजदूर, गांव के गरीब लोग इस ट्रिलियन और बिलियन का मतलब समझ पाएंगे।
जी सर। सर देश के युवाओं की कृषि के प्रति अपना लगाव कम होते जा रहा है, क्या कारण देखते हैं और इसको सुधारने के क्या प्रयास होने चाहिए सरकार की तरफ से?
सरकार युवाओं के प्रति उदासीन है, खासकर हिंदुस्तान की सरकार। देश की ऊर्जा को कभी भी इन्होंने सदुपयोग करने का मार्गदर्शन नहीं दिया। मोदी जी की सरकार आने के पहले इन्होंने बड़े बड़े सपने युवाओं को दिखाए, शाइनिंग इंडिया, स्किल इंडिया, पर किसी भी युवाओं को स्किल्ड नहीं किया गया। उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। आज हम कई देश देखते हैं, आज इंटरनेट का जमाना है, हम लोग विश्व के सारे देशों को देख सकते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, उन्नतशील कंट्री है, उस देशों में खेती किस आधुनिक पद्धति से की जाती है। क्यों नहीं हमारे यहाँ उस आधुनिक पद्धति से खेती करने का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता? क्यों नहीं किसानों के बच्चों को ये बताया जाता कि यदि आपके क्षेत्र में सोयाबीन होती है तो आप एक सोयाबीन मिल का भी स्थापना कर सकते हो, आप एक ऑयल मिल की स्थापना कर सकते हो, आप एक धागा बनाने की फैक्ट्री डाल सकते हो। यदि आप कपास का आपके खेती में और आपके क्षेत्र में कपास होता है तो आप उससे कपड़ा उद्योग लगा सकते हो। आपके यदि क्षेत्र में और आपके खेत में यदि संतरा होता है तो आप उसके कई कॉस्मेटिक वस्तुएं बनाने की फैक्ट्री डाल सकती हो। इसका ट्रेनिंग, इसकी जानकारी और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्यों उदासीन है, क्यों नहीं इस ओर कदम बढ़ाती कि हमारे देश का किसान जिस क्षेत्र में जो वस्तु उगाता हो वो किसान उद्योग लगाए, किसान कंपनी की स्थापना करे, किसान फैक्ट्री लगाए और कई कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं और उसमें किसानों के बच्चे उद्योगपति बन सकते हैं, एक किसान उद्योगपति बन सकता है। पर यदि हमारी सरकार चाहे तब, हमारी सरकार को केवल सरकार गिराने और बनाने से फुर्सत मिलेगी और सरकारी पैसों का भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिलेगी, तभी हमारे इस देश के युवा उद्योगपति बन पाएंगे।
जी, तो ये थे संदीप जी भकने, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर घटती गरीबी और
गजी बत्ती
सरकारी
बोलोगे क्या?
खाते की,